ओम शांति, गुड इवनिंग। सो चाय पी ली सबने? ओके, सो वेरी वार्म वेलकम अगेन। तो अभी हमारा जो सेशन है उसका नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग ऑलवेज ये बात करते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने कहीं पे नेट पे पढ़ा था और कोई ऑथर ने बताया हुआ है कि इम्पॉसिबल का स्पेलिंग भी ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। बट जब मैंने पढ़ा तभी मुझे अच्छा लगा, बट जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था और मुझे कुछ प्रॉब्लम आया तब मुझे वो याद नहीं आया कि आई एम पॉसिबल, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। तो आज वही आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर और थोड़े बहुत डिफिकल्टीज जो हमारी लाइफ में होती है उस पर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स और जो हमारे पास जो फैकल्टीज है। तो लेट मी इनवाइट उषा बेन ऑन स्टेज, ए एस पटेल, ललित भाई एंड रूपा बेन। जैसे हम इम्पॉसिबल पॉसिबल की बातें तो बहुत करते हैं, बट अभी वो है क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है इम्पॉसिबल वे? अगर वर्ड पे देखा जाए तो वी है अल्फाबेटिकली आई एम पी डब जो भी है वो, बट उसका मीनिंग क्या है? मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल को आप मानते तो हो, जानते भी हो और एक्सपीरियंस भी करते हो कि गलत है, तो वो क्या है? तो अभी उस पे टॉपिक को ओपन करने के लिए, टॉपिक क्या है उनके व्यूज जानने के लिए, आई वुड लाइक टू इनवाइट ललित भाई। ललित भाई जो है वो प्रोफेशनली चार्टर अकाउंटेंट है और जो ब्रह्म कुमारीज का पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो मैनेज करते हैं। और ललित भाई की एक जो मुझे पर्सनली बात पता है कि उनको बचपन से ही भगवान और स्पिरिचुअलिटी को जानने का क्रेज था, और दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दैट नेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट डिजायर आज वो ब्रह्मा कुमारीज में एक पार्ट है। और ललित भाई की एक बात है कि वो डॉक्टर एज ए डॉक्टर नेचुरोथेरेपिस्ट भी है, और आप सबको जो गुड़ी बैग मिला हुआ है उसमें एक बुक है सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उन्होंने लिखी हुई है। और ललित भाई का ये है कि जैसे वो कैलकुलेशन के साथ भी खेलते हैं, चार्टर अकाउंटर है तो वो करते हैं कैलकुलेशन करते, बट वो एक अच्छे लेखक भी है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं उनसे ही बोलूंगा कि लेट हिम शेयर फ्यू वर्ड्स अबाउट द टॉपिक। ललित भाई,
थैंक यू जिग्नेश भाई, गुड इवनिंग, ओम शांति। यूथ और इम्पॉसिबल, कभी कभी दो विरोधाभासी शब्द लगते हैं, और आपने कई बार सुना भी होगा कि इम्पॉसिबल शब्द जो इंग्लिश का है उसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करें तो क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। आप में से कितने भाई बहने जो यहां बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल? कृपया हाथ खड़ा करेंगे,
वेरी गुड। तो मैं हमारे इस सेशन के चेयरपर्सन से पूछना चाहूंगा कि लगभग 90% भाई बहनों ने तो हाथ खड़ा किया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये सेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है तो फिर भी कुछ जानने की इच्छा है आपकी, ऐसा लग रहा है। लंदन की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उसके प्रेसिडेंट लॉर्ड केल्विन, उन्होंने 1895 में एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज हवा से भारी है उसको वो उड़ नहीं सकती है और उसको उड़ाया नहीं जा सकता है, जो चीज हवा से भारी है। और ये तो उनका एक स्टेटमेंट था, बिकॉज वो खुद भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लेकिन इस स्टेटमेंट के 10 सालों के भीतर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया जो मनुष्य को लेकर उड़ सकता है और बहुत से सामान को लेकर उड़ सकता है। माना इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से वर्ल्ड का बहुत फेमस रॉकेट डिजाइनर वॉन ब्रुएन ने जब 1969 में चंद्र अभियान सफल हुआ और उसके बाद उन्होंने और भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे, उसके बाद उसने कहा कि अगर मुझे ऑथोराइज कर दिया जाए तो मैं डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द निकाल देना चाहूंगा। तो कहने का क्या भाव है? कहने का भाव यही है कि अगर हम ठान लें तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सफलता मिलके ही रहती है। लेकिन किसको सफलता? उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। आप जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा एक बहुत छोटे से गांव के साधारण लड़के, जिनको कहते हैं गांव का छोरा, ऐसे थे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वरीय आदेश कहो, मदद कहो, जो आज एक विश्वव्यापी संस्था 140 देशों में हजारों हजारों सेवा केंद्रों के द्वारा सेवाएं चल रही है, उसके संस्थापक बन चुके थे। उसके लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बहुत छोटी छोटी बातों में भी हम कभी कभी बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल महसूस करते हैं। मुझे याद है जब मैं अपने हाई स्कूल लाइफ में था, उदयपुर में मैं स्टडी कर रहा था, तो वहां का एक मार्केट है अश्विन बाजार, जो थोड़ा ट्रैफिक वाला मार्केट है, एकदम लंबा सा दिखाई देता है और बहुत ट्रैफिक रहता है। उस समय मैंने मोटरसाइकिल चलानी सीखी नहीं थी, तो पहली बार उस मार्केट में मुझे मोटरसाइकिल चलाने के लिए दी गई। तो मैंने कहा इतना ट्रैफिक है तो मैं कैसे इसमें मोटरसाइकिल चलाऊंगा, यहां तो रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जैसे रास्ता जैसे क्लियर होता जा रहा था और आसानी से चला सके। तो बहुत बार हम मान के बैठ जाते हैं कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ाए उसकी तरफ तो रास्ता आगे का खुलता जाता है। जो हम सभी दरवाजे बंद समझते हैं, लगभग ऐसा नहीं होता है, रास्ता खुलता जाता है। क्या चाहिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए? तो सबसे पहले तो एक सपना चाहिए कि मुझे ये करना है। वो सपना नहीं जो रात को सोने के बाद आता है, लेकिन वो सपना जो रात को सोने नहीं देता है। वो सपना चाहिए कि मुझे ये करना है। और उस सपने के प्रति हमारा प्रेम चाहिए, हमारी भावना चाहिए कि नहीं ये होगा। एक है केवल विचार कर लिया वो नहीं, लेकिन उसके प्रति सतत हमारी भावना बनी रहे कि नहीं ये होगा जरूर, इसे करना है, और एक इंटरनल प्रेम हो उस सपने से कि हाँ नहीं मुझे ये हासिल करना है। और उसके बाद एक विजुअलाइजेशन, निरंतर विजुअलाइजेशन, इसकी एक दो मिनट की फिल्म बना लीजिए आप अपने मन में, और उस फिल्म को आप रिपीट करते जाइए कि ये चीज ऐसे हुई है और ये चीज हो गई है। उस चीज का अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन आपके माइंड में क्लियर हो, ये इसके स्टेप्स हैं। उसके बाद आपको हताश निराश करने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन दृढ़ता कि मुझे करना ही है। जब ब्रह्मा बाबा ने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी तो उनके सामने समाज के, मित्र संबंधियों के, सरकार के अनेक प्रकार के विघ्न आए थे, पेपर्स आए थे, लेकिन एक दृढ़ता, वो दृढ़ता से हर चीज को पार करते गए। तो उसके लिए एक दृढ़ता चाहिए और पॉजिटिविटी, निराश नहीं होने का, पॉजिटिविटी, होगा, जरूर होगा। अगर हमारे मन में निराशा आ गई कि ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उससे संबंधित विचार आपको लोगों की तरफ से भी मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर भी प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, और आप ढीले हो जाएंगे अपने लक्ष्य की तरफ, तो वो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिविटी, जो चीज करनी है वो करनी है, जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इस प्रकार से एक पॉजिटिविटी उसमें हो। और निरंतरता, उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी से कोई भी चीज, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, लेकिन धीरे 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 वो हासिल हो ही जाती है। अगर आपने देखा हो, आज के समय में तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई गांव के बैकग्राउंड से आए हो तो गांव में पानी भरने के लिए कुआं हुआ करता था पहले, उस कुएं में से पानी निकाला करते थे बाल्टी भर भर के, और उस पे एक लोहे की छड़ लगी होती थी जिस पर से बाल्टी की रस्सी खींच के आती थी। वो रस्सी सूत की बनी हुई होती थी, सूत के धागे की पूरी, लेकिन ओवर ए पीरियड उस लोहे की पट्टी पर भी अंदर निशान हो जाते थे वो, जब बार बार रस्सी आती थी तो, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता वो रहती थी। तो एक सूत की रस्सी से लोहे पर भी निशान हो जाते थे, छेद हो जाते थे अंदर। तो इस प्रकार से जो लक्ष्य हमने रखा है उसके प्रति हमारी कंटिन्यूटी रहे, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद सहन शक्ति, कोई कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे, अपमान भी करेंगे, इंसल्ट भी करेंगे, कुछ भी, लेकिन एक अंदर से सहन शक्ति रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से मंजिल की तरफ हम पहुंच ही जाएंगे। सकारात्मक जो हमारा फ्रेंडशिप हो, जिसको हम यहां सत्संग कहते हैं, उस प्रकार से एक हमारा जो फ्रेंडशिप है वो पॉजिटिव विचारों वाला हो। वो एक कहावत है ना कि हमें अपनों ने मारा, गेरों में कहां दम था, हम डूबे भी वहां जहां पानी ही कम था। तो आपको निराश करने वाले अपने वाले ही होंगे, जो धीरे 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 आपको रोज कोई ना कोई नेगेटिविटी फीडबैक करते रहेंगे और आपके मन में संशय पैदा करते रहेंगे, डाउट्स क्रिएट करते रहेंगे, और वो चीज आपको इम्पॉसिबल लगने लगेगी। लेकिन एक पॉजिटिव, आपका जो फ्रेंड सर्कल हो वो भी एक पॉजिटिव विचारधारा वाला, या आप में इतनी पॉजिटिविटी हो कि आप उनको भी पॉजिटिव बना देवे। और एक जो सबसे बड़ी बात है, चाहे कितनी भी इम्पॉसिबल चीज हो, एक सबसे बड़ी बात है जो उसको पॉसिबल बना सकती है वो है परमात्मा पिता का साथ, उसमें विश्वास। अगर वो आपने हासिल कर लिया तो सचमुच कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शास्त्रों में बहुत सुंदर उसका उदाहरण आता है रामायण में, कि जब समुद्र को पार करके लंका में जाना था और कोई नहीं जा पा रहा था, तब आप सब जानते हैं कैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने उनके शक्तियों की स्मृति दिलाई और उन स्मृतियों में स्थित होकर उन्होंने वो इम्पॉसिबल काम भी कर लिया। तो अगर ईश्वर का साथ है, हमने उनमें विश्वास रखा है, हम उनके साथ शेयरिंग करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। वो कैसे ईश्वर का साथ लेना है वो यहां पर आपको जो मॉर्निंग सेशन है राजयोग शिविर का, जो आज भी सवेरे एक सेशन हुआ था, ऐसे ही 3 दिन तक कंटिन्यूस आपको मिलेगा, वो सेशन के द्वारा आप बहुत सहज रीति से ईश्वर का साथ प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। साइलेंस पावर इसमें एक मुख्य चाहिए, कि जब ऐसी कोई भी बात हो तो आप थोड़ा साइलेंस में बैठे इस राजयोग का अभ्यास करें तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे और उन आइडियाज के द्वारा जो रास्ते बंद हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा, आप ऐसे कैंपस में बैठे हैं जहां से ये पॉजिटिव ऊर्जा आप भर के जाएंगे 3 दिन बाद, और आप खुद कहेंगे, विश्वास के साथ कहेंगे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अंत में 2 लाइनें बोल के मैं इस सेशन को यहां मेरी बात को पूरा करूंगा। प्रॉब्लम्स आएगी, मैंने बताया ना, तो सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफलता मिलेगी जरूर। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक्स अ लॉट ललित भाई। तो ललित भाई का यही है कि वो प्रबुद्ध वक्ता है हमारे वहां पे, जो इतना अच्छा बोलते हैं और लिखते भी है। मुझे एक बात याद आ रही है, उन्होंने बताया कि सपना आपको सोने ना दे। मुझे एक बात याद है कि यूथ विंग के थ्रू एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा। तो मुझे एक बार रात को 9 बजे उन्होंने फोन किया था, कि तब मैं अहमदाबाद में था, कि एक आइडिया है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम ऐसी छोटी सी मूवी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे। तो मुझे याद है कि वो 9 बजे उन्होंने फोन किया था, मैं गया, फिर मैं उनको दूसरे दिन मिलने भी गया था, मुझे याद है। तो मैंने उनको पूछा कि ये आइडियाज है, तब पता चला, मतलब मैं जब गया सेंटर पे तब पता चला वो जस्ट सोने गए है, एंड दैट वॉज मॉर्निंग 8 o'clock। तो ये बात फैक्ट होती है कि सपना ऐसा हो जो आपको सोने ना दे। तो थैंक्स अ लॉट ललित भाई। अभी हम लोग अपने सेशन की और आगे बढ़ते हुए तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा उषा बहन से। आप सबने सुबह उनका क्लास मतलब किया ही होगा, जो आपने मेडिटेशन के लिए सुना होगा उनसे। उषा बहन की एक बात यह है कि जैसे कहीं पे अंधकार होता है तो अंधकार में उषा की एक किरण फैलाना, वो उनकी क्वालिटी है जो राजयोगा टीचर है हमारे वहां पे। और मुझे पर्सनली एक बात उनकी ही अच्छी लगी थी, जब मैं नया नया मेडिटेशन सीख रहा था तब उन्होंने एक बात ये बताई थी कि मेडिटेशन ऐसे करना चाहिए जिसमें आपको ऐसा फील ना हो कि आप बर्डन फील ना करो, आप रिलैक्स होकर मेडिटेशन करो और भगवान को बड़े प्यार से याद करो। तो वो मुझे आज भी वो बात अच्छी लगती है। तो वो है हमारी उषा बहन, तो मैं उषा बहन का भी स्वागत करूंगा। उसके बाद है हमारे पास हमारे साथ है AS पटेल सर, जो कि निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है उसके एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार है। और मुझे इतना पता है कि जब मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में था तब मुझे ऐसा सुनने में आया था कि सर के अंडर में ही एक स्पिरिचुअल कोर्स जिसका नाम है स्पिरिचुअल वैल्यूज फॉर लर्निंग टू लिव, वो इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलेज में। और 2 घंटे का एक सेशन होता था जिसमें हम लोग उनको बताते थे कि हाउ यू कैन इम्बाइब द स्पिरिचुअलिटी इन स्टूडेंट लाइफ। तो ये एक प्रोजेक्ट वहां पे कॉलेज में लॉन्च हुआ था। तो एस पटेल सर जो एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार है मैं उनका भी स्वागत करूंगा, और हमारे साथ है रूपा बहन। रूपा बहन पिछले 25 सालों से इस ज्ञान में है और 17 सालों से वो अजमेर सेंटर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने बीकानेर सेंटर पे भी सेवाएं दी है और यूथ में काफी एक्टिव मेंबर है, क्योंकि वो पद यात्रा है, साइकिल यात्रा, वो सब में वो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। और वो यूथ के लेवल पे स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर टाइम एंड माइंड मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी करवाते हैं। तो मैं रूपा बहन का भी स्वागत करूंगा हमारे सेशन के लिए। और अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो मेन सेशन है। तो बिफोर दैट, जैसे कि एक बात है कि शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नथिंग इज पॉसिबल की बात चल रही है। तो अगर आपको पता हो कि माइकल जॉर्डन, उसने ये बोला था कि लाइफ में वो कितनी बार भी फेल हुए हैं, बट फेल होना इज नॉट अ स्टॉप थिंग, यू शुड गो अहेड। तो आई फेल ओवर एंड ओवर एंड देन आई सक्सीड। तो लाइफ में आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप गिरोगे, बट अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपने वो डायरेक्शन को चूज प्रॉपर किया है। तो अगर आप थक गए, हार गए, तो यही वाला हो गया कि इट्स इम्पॉसिबल। तो सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मेरे पास वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, बट मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि उषा बहन से कि इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन सक्सेस एंड इम्पॉसिबिलिटी, लाइक इन टर्म्स ऑफ इम्पॉसिबल इज समथिंग कि ये नॉट अवेलेबल, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो ये जानना था कि सक्सेस और इम्पॉसिबिलिटी, उसके बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है।
ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सक्सेस एंड इम्पॉसिबल। सबसे पहली बात तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सक्सेस मीन्स वेयर देर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट विथ वॉट एवर टास्क यू आर डूइंग। जो भी टास्क आपने सोचा है, जैसे ललित भाई ने कहा कि आपने एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हो, जो दृढ़ता शक्ति, पॉजिटिविटी, ये सारा पुरुषार्थ है आपका। और उस पुरुषार्थ में जहां वो स्टेज आ जाती है कि यू अचीव एंड देयर इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तो वहां इम्पॉसिबल की चीज हो ही नहीं सकती है। इसलिए सक्सेस है वहां नथिंग इज इम्पॉसिबल, तभी सक्सेस है। अगर सक्सेस नहीं मिला तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये दोनों चीज साथ में नहीं जाती है, सक्सेस एंड इम्पॉसिबल, दोनों चीज साथ में नहीं जाती है। अगर इम्पॉसिबल है तो आप कभी सक्सेसफुल होंगे नहीं, देयर वॉन्ट बी अ फीलिंग ऑफ इनर फुलफिलमेंट उस टास्क के प्रति। इसलिए जहां सक्सेस है वहां इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये जरूर है कि थोड़ा, जैसे भाई ने कहा कि प्रॉब्लम्स आएंगे, बैरियर्स आएंगे, कुछ लिमिटेशंस अपने बीच में आएंगी, लेकिन वो टास्क जो हमने एक सोचा है पूरा करना है तो उसमें वो चीजें रुकावट बन नहीं सकती है, लेकिन और भी वो स्टेपिंग स्टोन हो जाएंगे जिस पर चढ़ करके आप उस सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर बात मुझे याद आती है कि ईगल अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है। तो कहा जाता है कि ईगल अपने बच्चे को अपनी चोंच में लेकर के बहुत ऊंचाई पर चली जाती है, आकाश में बहुत ऊंचाई पर, और वहां से वो बच्चे को छोड़ देती है। और जैसे ही वो बच्चा छूट जाता है तो वो अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर देता है और उसी से ही वो उड़ान भरना शुरू कर देता है। तो ठीक इसी तरह कभी कभी लिमिटेशन में सबसे बड़ी बात कि एक डर महसूस हो सकता है, लेकिन उस डर को, उस लिमिटेशन को भी हमें खत्म करना है, यही सोचते हुए कि नहीं, आगे बढ़ना यही हमारे जैसे लक्ष्य में है, हमें आगे बढ़ना ही है, आगे जाना ही है। इम्पॉसिबल शब्द को अगर सामने ले आएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, सक्सेस को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो शब्द को, जैसे कहा कि वो अपने उस डिक्शनरी में से ही निकाल देना चाहता है, सचमुच हम अपनी माइंड की डिक्शनरी में से तो उस शब्द को डिलीट ही कर दे तो हमारे लिए कुछ भी असंभव वाली चीज है नहीं। ठीक है ना?
मतलब कि जैसे कि मैं ये मानता हूं कि अगर सक्सेस की बात कर रहे हैं, बट कभी कभी होता है कि जैसे कि मैं जब एग्जाम दे रहा था AIEEE के लिए कि मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये है वो है, तब मैं पहले से ये बैठ के ही बैठा था कि मुझसे होना ही नहीं है। तब मैंने यही ठान लिया था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि अगर मेरे पास दो दिन बचे हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो थॉट आता है, मान लो तब मुझे ये डिसाइड होता है, मत डिफाइन होता है मेरे लाइफ में कि सक्सेस मतलब इम्पॉसिबल फॉर मी फॉर दैट पर्टिकुलर थॉट। तो अगर मान लो कि वो थॉट आ गया कि कभी कभी होता है ना कि लाइक एग्जाम के दो दिन बाकी हो, मेरे को तो डेफिनेटली होता था दो दिन बाकी हो तो अगर एक मंथ जितना भी प्रिपरेशन किया है ना वो सारा मतलब डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे जो थॉट आता है मान लो कि, तो उस टाइम पे मैं क्या करूं? मतलब
उस समय जैसे स्टेप्स हमको बताए भाई ने, बहुत अच्छी बात है कि उस समय अगर हम बैठ करके ये विजुअलाइजेशन करें कि नहीं होगा ही, क्यों नहीं होगा, और जब आपका विजुअलाइजेशन के अंदर दृढ़ता होगी, पावर होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो भले कितना भी वो थॉट आपको परेशान करने का प्रयत्न करे, लेकिन अगर आपका विजुअलाइजेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर विजुअलाइजेशन पॉजिटिव है तो आप कर पाएंगे। मैं अपने जीवन के अनुभव से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई और शुरू में मैं बॉम्बे में अपनी सेवाएं दे रही थी, और क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी, इंग्लिश में एक कमांड थी, इसलिए मुझे हैदराबाद भेजा गया था कि आपको वहां कॉरपोरेट में मैनेजमेंट कराना है। अब मैनेजमेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं मेरे पास में और कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश आती है इसलिए आपको जाना है। तो उस समय मुझे महसूस हुआ जैसे आपने कहा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। हमने राजयोग मेडिटेशन की बातों को सुनाना शुरू किया, और जैसे ही सुनाना शुरू किया तो इतना पावरफुल एक नेगेटिव फीडबैक आया, प्रैक्टिकली इतना नेगेटिव एक फीडबैक आया कि ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए। तो उस समय आप सोचो कि 200 एग्जीक्यूटिव्स आपके सामने बैठे हो और 200 को बैजेस में हमने मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सेशंस कराए, और 4 हफ्ते के बाद मीटिंग रही और उस मीटिंग में इतना नेगेटिव फीडबैक हो कि दिस इज नॉट व्हाट वी वांट एंड यू कैन बेटर पैक अप एंड गो। उस समय एक ऐसा धक्का सा लगा क्योंकि ये रिजल्ट तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था हमने। उन्होंने कहा हमने तो मैनेजमेंट चाहा था, हमने ये स्पिरिचुअलिटी नहीं चाही थी। तो उस समय अंदर में व्यक्ति को गुस्सा भी आता है ना, लेकिन अभी सारे एग्जीक्यूटिव्स के सामने और सबसे यंग अगर मैं ही हूं उस समय, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुई होंगी हमारी। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा कि आपने हमें स्पिरिचुअलिटी कहा था जब हम आए तब कि स्पिरिचुअलिटी हमें चाहिए हमारे मैनेजमेंट में, तो इसलिए हमने स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया। मैनेजमेंट तो हमको कहा ही नहीं गया था कि आपको मैनेजमेंट चाहिए, अगर वो चाहिए तो हम वही कराते थे। बहुत बड़ी चैलेंज थी। जैसे ही ये बात कही शांति से, प्रेम से, तो जो HR मैनेजर था तो उनको हमारी क्षमता का शायद पता था कि ये लोग नहीं करा पाएंगे, तो उसने हमें चैलेंज दिया, सारी सभा के बीच में चैलेंज दिया, Okay, from tomorrow 9 o'clock we want management. Go ahead with it. अब आप समझ सकते हैं कि शाम को 5 बजे की ये मीटिंग हो और उस समय हमें कहा जाए कि कल सुबह 9 बजे लास्ट चांस आपको मैनेजमेंट कराना है और हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है मैनेजमेंट का, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। ललित भाई ने कहा जैसे रात नींद नहीं आनी चाहिए, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, लेकिन मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, कोई मटेरियल नहीं था, लेकिन ऐसे समय में जो कहा परमात्मा का साथ, परमात्मा का सपोर्ट, मैंने 2:30 बजे से मेडिटेशन शुरू किया और वो मेडिटेशन करने के बाद एक मन के अंदर आशा की किरण थी कि शायद हम करा पाएंगे। उसके बाद नर्वसनेस क्या होती है पहली बार मैंने अनुभव किया जीवन में। 7 बजे कोई मैनेजमेंट का थॉट नहीं है, 9 बजे हमें मैनेजमेंट कराना है, 7 बजे तक मेरे अंदर कोई थॉट नहीं है कि मुझे एक सेशन 1.5 घंटे का क्या कराना है। लेकिन जैसे कहा कि परमात्मा का साथ और सपोर्ट हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। 7 बजे मैं बाहर में बैठी थी बगीचे में, गार्डन में, और मैं आकाश की ओर देख रही थी और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे थॉट्स दे रहे हैं, मैनेजमेंट के थॉट्स। आकाश के स्क्रीन पर मेरे सामने कुछ शब्द आए और वो शब्द मैंने अपनी डायरी में आज भी लिखे हुए हैं, वो डायरी मैंने संभाल के रख के, 1991 की बात है ये, और मैंने उसको संभाल के रखा है एक याद रहे मुझे के मुझे सिखाने वाला कैसे परमात्मा था। कोई बुक्स नहीं थी हमारे पास में उस वक्त, मैंने लिख लिए वो शब्द सारे जो आकाश की स्क्रीन पर आए और उसके बाद जैसे द थॉट्स जस्ट स्टार्टेड फ्लोइंग इन, इतने सुंदर विचार आने लगे। मैं लिखती गई लिखती गई लिखती गई 7 से 8 बजे तक ये अनुभव, 9 बजे मुझे सेशन कराना है एंड आई फेल्ट आई एम प्रिपेयर्ड। जब लोग आए मैंने शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद पता नहीं एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा डेवलप हो गया था क्योंकि इतना मैटर था मेरे पास में जैसे, और मैंने शुरू किया। वो सेशन ठीक 1.5 घंटा चला, जो 1 घंटे की कोचिंग मिली थी 1.5 घंटा चला। 1.5 घंटे के बाद जैसे आई फेल्ट आई एम कंप्लीटली एम्प्टी, सब कुछ मैंने दे दिया जो देना था, और जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरी, खास उन्होंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को भेजा था मुझे देखने के लिए कि ये क्या कराती है, क्योंकि उनके मन में यही था ये लोग नहीं करा सकेंगे। लेकिन 1.5 घंटे के बाद वो व्यक्ति जाते हुए मुझे कहता है, सिस्टर एक्सलेंट, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट वी वांट, नाउ नोबडी कैन एवर पॉइंट आउट एनी फिंगर टू यू कि आपने मैनेजमेंट नहीं कराया, दिस इज मैनेजमेंट। और तब मुझे महसूस हुआ 6 सेशन हमें कराना था, 1 सेशन तो हो गया, दूसरा सेशन शाम का था, उसके लिए भी हम लोग बगीचे में जाके बैठे, फिर से वही आकाश की ओर देखा, जहां से पूरा होता था वहां से शुरू होता था। दूसरा सेशन तैयार हो गया, दूसरा सेशन भी करा दिया, तीसरा सेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, उस समय भी हमने यही टेक्निक को अपनाई, और 3 सेशन के बाद हमें महसूस हुआ कि वो सारी शक्ति ऊपर से जैसे योग्यता को भर दिया। इसलिए कहा कि उसमें जब डाला जाता है तो हाथ पैर मारना जब शुरू कर देते हैं और आप सीख जाते हैं। कोई को लगता है कि धक्का मार दिया इनको, पहाड़ी से नीचे गिरेंगे, अभी ये बचेंगे नहीं, हड्डी टूट जाएंगी इनकी, कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि धक्का मार दिया लेकिन उसमें उड़ना सीख लिया हमने तो, और जब उड़ना सीख लिया तो उसमें एक ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता डेवलप हो गई। कहने का भावार्थ, ईश्वर जब कुछ देना चाहता है कैसे देता है? बिना कोई माध्यम के वो दे नहीं सकता है। तो जब देने का वक्त आता है तो ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी चैलेंजेस आती है, लेकिन उस चैलेंजेस में अगर हमने ये सोच लिया और बैकआउट कर दिया, आई कांट डू इट, तो वो दे नहीं सकता है। लेकिन उस समय एक हिम्मत रख करके विश्वास के साथ आगे कूद पड़ो, अपने आप तैरना सीख जाएंगे, उड़ना सीख जाएंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
तो मतलब बात ये हो गई कि अगर वो कहते हैं ना कि लोहे का काम करके अगर टाटा हो सकता है, जूतों का काम करके अगर बाटा हो सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते, वो वाली बात हो गई। तो मतलब ये हुआ कि फेलर से कभी डरना नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि यू नो थॉमस अल्वा एडिशन, राइट? एवरीबडी नोज, राइट, थॉमस अल्वा एडिशन। तो उसको किसी ने पूछा कि तुमने थाउजेंड्स टाइम जो जो किया वो तो टाइम पास हुआ ना। तब उसने ये बहुत अच्छा बताया कि फेलर तब होता है, फेलर उसको बोलते हैं कि जिनको पता होता है कि अगर थोड़ा सा और ट्राई कर लेता ना तो मैं सक्सेस हो जाता। तो मतलब असफलता तब मिलती है कि जब आप नजदीक में होते हो कोई सफलता के और आप गिव अप कर देते हो। तो मैंने वो गिव अप नहीं किया और मैंने थाउजेंड टाइम पे ट्राई किया और थाउजेंड टाइम पे जो इन्वेंशन हुआ, एंड दैट वी कॉल एज एन इन्वेंशन। तो अकॉर्डिंग विद दैट मैं एस पटेल सर से पूछूंगा, बिकॉज आप डायरेक्टली डील करते हो स्टूडेंट के साथ। क्वेश्चन मेरा ये है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फेलर? मतलब जैसे कि लाइफ में फेल होते हैं तो वो रीजन क्या होते हैं? मतलब
अभी जो फेलर का रीजन जो है वो मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो वो ही है, अपने में हम खुद को एग्जामिन नहीं करते कि व्हाई आई शुड गोइंग टू फेल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप अंदर से एग्जामिन करेंगे तो आपको खुद का जवाब आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां की है। वो गलतियों को यदि मैं आप सुधार दूं तो फेलियर का चांस ही नहीं रहता, और फेलियर के बारे में सोचने का ही नहीं। मैं आपको मेरा दो एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैं वो एसएससी में था, हमारे वक्त वो 11th स्टैंडर्ड था और हायर मैथ इसमें आता था। हायर मैथमेटिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, और स्कूल में टीचर पढ़ाने वाला भी नहीं था, और हम 19 स्टूडेंट थे। मैंने प्रिंसिपल को जाके बोला कि मेरे को हायर मैथ्स रखना है। बोला कि भैया टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, हायर मैथ्स कितना कठिन सब्जेक्ट है, आप फेल हो जाएंगे तो हमारा स्कूल का रिजल्ट 5% वो 20% वो ऐसा हो जाएगा, तो हम मैनेजमेंट वालों को क्या बोलेंगे। मैंने बोला कि आपका मैनेजमेंट को आपका बोलना है, मगर मेरा लाइफ का क्या? सपोज मैं मैथमेटिक्स नहीं रखूंगा तो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं बन सकूंगा। तो आप देखो, मैंने मैथमेटिक्स बर जबरी से लिया वो लोगों के पास से, मैंने फॉर्म में भी फिलअप कर दिया और मैंने खुद मेरी सेल्फ को वो किया कि हाउ आई सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स। तो मैंने कहा मैथमेटिक्स इतना वो टफ था, पूरा तैयार करना भी डिफिकल्ट था, फिर भी मैंने एक बार देख लिया मैथमेटिक्स। बाद में तय किया कि 35-40% तो मैं खुद ही कर सकता हूं और बाकी का देखेंगे आगे। तो 35-40% को मैंने तैयारी करके मैंने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरी मदर मेरे को बोल रही थी कि बेटा रिजल्ट तो लेने के लिए जाओ। मैंने बोला कि नहीं जाऊंगा, 35-40% का अटेंड किया है और मैं फेल होने वाला हूं, वो मेरे को 100% ऐसा लग रहा है। फिर भी एक लड़का ने आके बोला मेरे घर पे, मेरे मदर को बताया कि पास हो गया है आपका लड़का। तो मेरा इतना आनंद था उस वक्त, आई गॉट 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। तो उस वक्त मैंने मेरे अंदर से थोड़ा एग्जामिन किया कि मैं इतना वो जो ठोठ बोलते हैं इसको, कम जो तैयारी वाला लड़का बोलते हैं, तो वो मैं नहीं हूं। आई गॉट आउट ऑफ 100 मार्क्स, नॉट 35। ऐसा मैंने सोच के मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। यू सी इन द यूनिवर्सिटी प्री साइंस, हमारे वक्त था प्री साइंस में, आई गॉट 139 मार्क्स आउट ऑफ 140 इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। यू सी, तो ऐसे फेलियर का विचार ही मत करो। आप ऐसे है ही नहीं। मैं जब युवा लोगों को देखता हूं तब मैं उसको बोलता हूं कि आप कभी मत सोचो कि यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, आप आगे आओ। दूसरा भी मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है, जब मैं एमएससी कर रहा था तो एमएससी में थर्मोडायनेमिक्स का एक पेपर था। थर्मोडायनेमिक्स में मेरा इतना मास्टर ही था कि लड़के लोग भी मेरे पास वो सीखने के लिए आते थे, हमारे जो कलीग्स थे वो। तो थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में जब मैंने यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो मेरा फेलियर का रिजल्ट आया, ओनली 90 मार्क्स आई हैव गॉट आउट ऑफ 100। तो मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर एग्जाम वो कंट्रोलर को पूछा कि भाई मेरा तो थर्मोडायनेमिक बहुत अच्छा है, मैं फेल ही नहीं सकता। सब प्रोफेसर लोग बोल रहे थे कि ये तो फेल ही नहीं हो सकता थर्मोडायनेमिक्स में, फिर भी कैसे फेल हो गए। तो मैंने यूनिवर्सिटी में इंक्वायरी किया तो जितने लड़के बैठे थे सब फेल हुए थे और आई गॉट द हाइएस्ट मार्क 19। तो यू सी सम टाइम दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में अराइज, मगर इससे पीछे मत हट जाने का। तो मैंने बोला, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी मिला, मैंने बोला कि सब मैं फेल ही नहीं हो सकता, आप फिर से एग्जामिन करवाइए। बोला कि वो रीअसेसमेंट का इधर कोई प्रोसेस नहीं है, आपको एक्सेप्ट ही करने का है। और हमारे उस वक्त एक पेपर आउट अदर साइड द यूनिवर्सिटी वो चलता था, वो बॉम्बे कोई प्रोफेसर के पास गया होगा तो उन्होंने वो रिजल्ट दिया था, तो आई एक्सेप्टेड। दूसरी बार मैं एग्जाम में बैठा तो आई एक्सपेक्टेड 75 मार्क्स, बट आई गॉट 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 द सेम पेपर। ऐसा होता है कभी कभी, तो इससे निराश नहीं होने का और फेलियर का तो कभी सोचो ही मत। यू इम्प्रूव योर सेल्फ, आपकी जात को आप तैयार करो और आपकी जात को आप खुद ही प्रश्न पूछो कि हमारे में क्या कमी है, हमारे में क्या गलती है, क्या हम नहीं कर पा सकते। सब कुछ पा सकते हैं। उषाबेन भी वो रोटी खा रही है, हम भी वो रोटी खा रहे हैं। उषाबेन भी जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, मगर उस रास्ते पर आप चलना शुरू नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे आप स्टार्ट कर दो। और अभी आप लोग जो इधर आए हैं, इधर इतना आध्यात्मिक वातावरण है और आध्यात्मिक जो शक्ति है बहुत जरूरी है। मैं सब लोगों को बोलता हूं, मैंने सिस्टमेटिक स्टडी नहीं किया है वो ब्रह्मा कुमारी का, मगर एक बार 2005 में भी आई हैव अटेंडेड दिस टाइप ऑफ सेशन, युवा का सेशन मैंने अटेंड किया था। तो जाने के बाद इतना चार्ज बैटरी हो गया था कि वो जो सब यूनिवर्सिटी में मैंने काफी काम किया इसके बारे में। अभी भी एक यूनिवर्सिटी के साथ, योग यूनिवर्सिटी के साथ हमने टाइप भी किया, क्योंकि लड़कों को जरूरी है। आपकी सकारात्मक सोच नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इम्पॉसिबल का तो विचार ही मत करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल शब्द ही निकाल दो आपके डिक्शनरी में से, एवरीथिंग इज पॉसिबल करके आगे बढ़ो। यू स्टार्ट विथ प्रॉपर प्लानिंग और टाइम के साथ प्लानिंग करो। जो आप टाइम के साथ प्लानिंग, मान लो कि मैंने मैथमेटिक्स, मेरा प्रिंसिपल ने बोला कि मत रखो, मैंने नहीं रखा तो मेरा क्या हालत होता आप सोच सकते हो। मगर मैंने सही डिसीजन लिया कि भाई ये नहीं करेंगे तो साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं पीएचडी नहीं कर सकूंगा, या मेरा ड्रीम तो डॉक्टर बनने का था मगर वो मेडिकल में मैं नहीं जा सका। एक मार्क मेरा कम था, इसके लिए मेरे को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। निराश नहीं हुआ मैं, ठीक है वो प्रोसीजर है, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। तो मैंने जो पीएचडी किया वो हमारे स्टमक में जो डिसीज होते हैं इसके बारे में किया। ऐसा नहीं कि एक 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 और हम फेलियर हो गए तो दूसरी बार सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा तो लाइफ में कुछ भी कभी भी नहीं। और हमारे जो निर्मा यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, मेरा तो प्राउड है, माय वन स्टूडेंट इज यू सी ईयर एंड हाउ दे आर एंकरिंग ईयर। तो हमारे सब जगह ऐसे लड़के हैं, मैं जो कनाडा अमेरिका गया तो वहां भी हमारे लड़के मेरे को मिले, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो मेरे को प्राउड है मेरी यूनिवर्सिटी का। प्राउड वो है कि हम सबको हमारे फर्स्ट ईयर में योग का शिक्षण देते हैं। कंपलसरी कोर्स है, इसमें पास होना कंपलसरी है, कोई यूनिवर्सिटी वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है। और ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि युवा धन को आज जरूरी है। आज जो सोच है युवा धन की, वो ये देश को जरूरत है। अब देखो क्या क्या हो रहा है देश, आपको सही रास्ते पर इसको देश को ले जाना है, आपकी सोच बदलना है। आज आप जितने लोग इधर बैठे हैं, जब आपके घर पे जाए तो यू स्टार्ट योर सेल्फ, आप में आ जाएगा, आपकी सिस्टर में आ जाएगा, आपके ब्रदर में आ जाएगा, आपके फादर में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली चलेगा वो चैनल। तो वो ऑटोमेटिक चैनल चलने के लिए आपको तैयार होना है। और इम्पॉसिबल शब्द निकाल के इधर से आप जाएंगे, इतना आपके पास सबके पास से मैं अपेक्षा रखता हूं।
तो एक पेंडिंग क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कि गोल की बात करते हैं हम लोग, जैसे आपने बताया कि आपने तो एक स्ट्रांग डिसीजन ले लिया कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, बट जब मैं टेंथ में था तब मेरा इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स था, बट मुझे मेरे घर से जबरदस्ती में मेडिकल और इंजीनियरिंग में घुसाया था, तो तब मेरे कोई थॉट नहीं थे जैसे कि, बट उसमें जाने के बाद जैसे कि 11th में 12th में मैंने साइंस लिया, उस टाइम पे ये होता था कि ये करना है करना है, मतलब जबरदस्ती करना है। वेल बाद में कॉलेज में तो मैं खुशी खुशी अपने हिसाब से ही मैं गया हूँ, बट मुझे ये पूछना था कि कभी कभी होता है, इवन एवरीबडी विल फील, कि कई चीजें होती है ना जो करनी पड़ती है, मतलब वो मेरे हाथ में नहीं होती है मान लो, तो उस टाइम पे मतलब क्या थॉट लगाऊं मैं कि जिससे मेरा इंट्रोस्पेक्शन या मेरा इनर एबिलिटी मुझे हेल्प करे।
अच्छा, वो गुड क्वेश्चन। ओ इसके लिए मैं आपको एक थ्री सर्कल थियरी बताऊंगा। थ्री सर्कल थियरी में एक जो फर्स्ट सर्कल है, वो फर्स्ट सर्कल आपके हाथ में है, आप जो सोचो वो कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास है, आप कंट्रोल करके इसको कर सकते हो। सेकंड जो सर्कल है, वो सेकंड सर्कल में आपका आधा कंट्रोल है, आधा कंट्रोल दूसरा का है, इसमें आप जितना सोचो इतना नहीं कर सकेंगे। और तीसरा जो सर्कल है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। मगर आपका जो विद इन द कंट्रोल है, इसमें ही आप सोचो, इसमें आप स्टार्ट कीजिए। मान लो कि मेरे को तो जो स्टार है इसको पकड़ के नीचे लाना है, वो नहीं, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, मैं ये स्टार को नीचे नहीं ला सकता। मगर मैं वो सोचूं कि मेरे को मेरे जो लड़के हैं इसका सोच बदलना है, डेफिनेटली आई कैन डू दैट, क्योंकि दिस इज विद इन माई कंट्रोल। इसको ऐसे ऐसे स्टेप बताऊं मैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। और आपको ये भी बताऊं कि जो आपके कंट्रोल में है इसके बारे में पहले सोचो, जो कंट्रोल में आधा है आधा नहीं है इसके बारे में मत सोचो, पहले कंट्रोल में है, विद इन द कंट्रोल है, इसमें सोचो। आप ऐसा सोचो कि मैं ये जो फूड लेते हैं तो फूड के बारे में भी, तो फूड मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप जो लोग इधर बैठे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में कभी नहीं सोचा हो। जो जो कंट्रोल में इसको सोचो और इसका अमल भी करो, और अमल करने के बाद इसका रिजल्ट देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप देखो, जो आप सब्जी वगैरह लेते हैं ना, वो सब इसमें सब में मेडिसिन है। एक एक जो ट्रीज है, ट्रीज में थाउजेंड ऑफ सब्सटेंस आर देयर, वो आइडेंटिफाइड नहीं है, कई आइडेंटिफाइड है। वो कोबीज है, कोबीज में आप देखो त्रिनडोल कार्बिनोल करता एक सब्सटेंस है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो मिला वो सब ले लेते हैं। मगर हमको जरूरत है नहीं है, कभी सोचते ही नहीं हम, वो सोचना चाहिए। इसलिए विद इन द कंट्रोल जो है इसके बारे में पहले सोचो। और कई बार वो बताया भाई ने, वो सही है कि कई बार हमारे पर वो इम्पोज किया जाता है, वो फैमिली सरकमस्टेंसेस ही ऐसे है। मेरा भी फैमिली सरकमस्टेंसेस ऐसा था, मैं जब वो मेरा फादर था, वो खेती करते थे, और खेती करते 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 वो जो बीड़ी पीते थे वो बहुत पीते थे, मगर इसको बीड़ी बंद करवाना मेरे कंट्रोल में नहीं था, फिर भी मैंने वो इसको लगातार कंटिन्यूअस रखा कि ये बीड़ी बंद करवाना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, इसको कैंसर हो जाएगा, वो दुखी होगा, वो होगा। तो बीड़ी बंद करवाने के लिए मैंने क्या किया, आप देखो, मैंने बीएससी होने के बाद मेरा सर्विस चालू हो गया, सर्विस का फर्स्ट ईयर का पूरा सैलरी मैंने लगा दिया उन्हों के लिए, मेरे लिए बिल्कुल यूज नहीं किया। 5 किलोमीटर में चल के पैदल जाता था वो सर्विस के लिए, 5 किलोमीटर पैदल वापिस आता था, फिर भी आई हैव नॉट परचेज द साइकिल एट दैट टाइम। तो आप देखो, मैंने पूरा पैसा लगा दिया। पैसा लगाने का मेरा हेतु वो था कि उन्होंने मैंने भेज दिया कि आप इंडिया का यात्रा करो, 90 डेज का यात्रा का वो टिकट बुक करवा के उनको दे दिया। जब वो यात्रा करके वापिस आए तो बीड़ी नहीं थी। तो मेरे को जैसे उषा बहन ने बताया भगवान भी साथ देता है, तो वो भगवान साथ देता है, आपको पता नहीं है भगवान कहां कहां आपको साथ देता है। वो मफत गर्गल के वहां रुके तो उन्होंने पता चला कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो वहां से फेंक दिया। वो जब घर आए तो मैंने बोला कि भी आप वो बीड़ी का क्या हुआ, तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैंने तो अभी बंद कर दिया, अभी कभी लेना नहीं। आप देखो 90 साल के बाद वो गुजर गए, मगर उन्होंने कुछ भी उनका 30 बोलते हैं वो ऐसे थे, उनका हेयर भी ब्लैक था और उनका वो चश्मा भी नहीं था, डायबिटीज नहीं था, बीपी नहीं था, यू कैन इमेज दैट। तो रिजल्ट मिलता है, कई बार वेट करना पड़ता है। हम अभी क्या सोचते हैं कि हमने स्विच दबाया इमीडिएट हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कई मैटर ऐसी है कि इसका रिजल्ट देर से मिलता है, आपको वेट करना होगा, और कई ऐसा है कि कई तुरंत रिजल्ट भी मिलते हैं। तो आपको वो सोचना होगा, कभी फेलियर के बारे में मत सोचो, फेलियर का शब्द ही निकाल लो।
ओके, तो सर बहुत अच्छी बात बताई, हम तो थैंक यू, बट हम तो इतना टेंशन करते, इतना सोचते रहते हैं ना कि मैं तो 28 साल का उम्र, फिर भी अगर मुझे बोलता है कि तुम्हारे आधे बाल सफेद हो गए तो मैं सोचता रहता हूँ, मतलब टेंशन होता है बात बात में। तो ये होता है ना कि जैसे गोल मैंने बना तो लिया है, तो मैं ललित भाई से पूछूंगा कि गोल तो बना तो लेते हैं हम लोग, पर ना फिर डेविएशन हो जाता है गोल से कभी कभी। जैसे कि एग्जांपल है कि मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मुझे बाय एंड ऑफ दिस ईयर मुझे ये करना है, बट कभी कभी सर्कमस्टेंस होती है, कुछ होता है, तो मेरा गोल डेविएट हो जाता है। और है ना, जो गोल बना हुआ है, जैसे कि करना है मुझे, जैसे मुझे जीआरई प्रिपरेशन करना है, तो मैंने गोल बना लिया कि नेक्स्ट ईयर मुझे जीआरई देना है, बट बीच में ऐसी फालतू की बातें, फ्रेंड फैमिली, तो पूरा गोल डेविएट हो गया, मतलब मेरा वहां पे ध्यान नहीं है। और फिर क्या होता है कि अगर मेरे बाकी के फ्रेंड ने जीआरई टॉफिल दे दिया एंड दे आर फ्लाइंग, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया। मतलब होता है ना ऐसा कि मतलब आप कंपेयर करोगे लोगों से। तो क्वेश्चन ये है कि डेविएट किए हुए गोल में, वो तो डेविएट हो गया है, बट अभी मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता है। आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल का ये क्वेश्चन होता है कि माइंड स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि गोल तो बना लिया है बट वो दूर है और मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, मतलब ये क्वेश्चन है।
अगर हमें अपने इम्पॉसिबल लक्ष्य को पॉसिबल करना है तो हमें अष्ट शक्तियों की जरूरत होती है जो इस राजयोग में बताई जाती है, और उसके साथ साथ एक कंसंट्रेशन पावर, वो बहुत जरूरी होता है। आप में से कुछ भाई बहन स्टडी कर रहे होंगे, किसी की पूरी भी हो गई होगी, और जो एग्जाम का अभी पैटर्न रहता है तो हम सारे साल स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम के 3 घंटे में अगर हमने उतना परफॉर्मेंस नहीं बताया तो हम फेल हो जाते हैं। स्टडी तो पूरे साल किया है लेकिन एग्जाम के 3 घंटे में परफॉर्म नहीं किया तो फेल हो जाते हैं। तो उस समय अगर हमारा कंसंट्रेशन पावर रहा, साइलेंस पावर रहा, तो एग्जाम में पेपर देखने के बाद जो उसका आंसर है वही फाइल हमारे माइंड में ओपन होगी और हम उसका आंसर कर पाएंगे। ये डेविएशन की बात है। अगर आपको 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है और आप अपने घर से निकले, आधे घंटे का रास्ता है, आप 5 बजे ही घर से निकल गए, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, लेकिन अगर बाजू में रोड पर कोई जादू का खेल दिखा रहा है आप वहां रुक गए थोड़ी देर, जादू का खेल देखने लग गए, फिर आगे गए और वहां पर कोई अच्छा मार्केट में मतलब कुछ सामान बिछा के कोई बेच रहा है, आप वहां रुक गए थोड़ी देर, आपने वहां खरीदी करनी शुरू कर दिए। ऐसे रास्ते के साइड सीन में आप अगर फंसे रहे तो आप 6 बजे रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य तो आपका सामने रहना ही चाहिए, और उसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। महाभारत में आपने सुना होगा कि अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था, चिड़िया, और चिड़िया में भी आंख, और आंख के अंदर भी जो वो जो पुतली होती है ना, की जिसको बोलते हैं, केवल वह दिखाई दे रही थी। हमारा लक्ष्य इतना स्पष्ट हो और उस लक्ष्य के प्रति हमारा उतना कंसंट्रेशन हो, अगर हमको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है तो यह क्वालिटी हमारे में डेवलप करनी ही होगी, और ये रातों रात डेवलप नहीं होती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, हमारे मन को एकाग्र करना पड़ता है। मां गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तू मन मेरे में लगा ले, तेरा लक्ष्य हासिल हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाएगा, केवल मन मेरे में लगा दे। उसको बहुत अच्छा भाषण देते हैं, ज्ञान समझाते हैं कि मन मेरे में लगा दे। अर्जुन बोले, प्रभु ठीक है आप कह रहे हो मन मेरे में लगा दे, लेकिन मन तो चंचल घोड़ा है, टिकता ही नहीं एक जगह, जैसे ही एक जगह टिकाने की कोशिश करते हैं उड़ के कहीं चला जाता है, यहां मित्र संबंधियों में पदार्थों में घूमने चला जाता है, कहीं चला जाता है। तो इसको कैसे लगावे ये समझाओ कि मन कैसे लगावे। तो कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब उसमें दिया था, असंशय महाबाहो मनो दुर्लिभम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि हे अर्जुन निसंदेह मन चंचल घोड़े की तरह है जिसको वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन संभव है। किसके द्वारा? एक निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास। मैंने बताया ना वो रस्सी का एग्जाम्पल आपको, कि लोहे पर भी निशान हो जाता है उस निरंतर अभ्यास से, और दूसरा बेहद के वैराग्य के द्वारा। कैसा वैराग्य? कि मुझे 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो मैं साइड सीन में नहीं फंसूं, उसके लालच में नहीं जाऊं, उससे वैराग्य। घर बार छोड़ने से वैराग्य नहीं, लेकिन हमारी लक्ष्य के तरफ हमारा ध्यान, बाकी चीजों से हमारा वैराग्य। इन दो चीजों का अगर हम अभ्यास करते हैं, माना इसको हम अगर अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो ये कंसंट्रेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा और हम पास हो सकेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा अपना ही बताऊं, मैं जब सीए की स्टडी कर रहा था, एक ग्रुप क्लियर हुआ था और मैं ये राजयोग का अभ्यास शुरू किया। मैं और मेरा कजिन दोनों एक ही कमरे, किराए के छोटे से कमरे में रहकर स्टडी कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने राजयोग का प्रैक्टिस शुरू किया तो मेरा मन पूरा ही बाबा में, शिव बाबा में इस प्रकार से लगा कि भाई मुझे अपने जीवन को संपूर्ण बनाना है। तो डेली ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर ज्ञान सुनना, राजयोग मेडिटेशन करना, वहां पर जो भी सेवाएं होती है वो करना, वो मेरा डेली रूटीन बन गया था। अब जो मेरा कजिन था वो दिन में 14-14 घंटा स्टडी करता था, कुर्सी पर जैसे फेविकोल चिपका के बैठ के वो स्टडी करता था, और मैं था तो मुश्किल से आया घर, वो सारा कारोबार करके आता था रूम पर, फिर सोया सोया केवल जो हमारे सजेस्टेड होते थे, मतलब सॉल्व क्वेश्चन आंसर के बुक होती थी उसको पढ़ता था, और सोए सोए पढ़ते पढ़ते कब नींद आ जाती थी वो मुझे भी पता नहीं पड़ता था। तो मेरे कजिन ने कहा कि ललित मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं तू सीए में से पास हो जाए, तू पास हो ही नहीं सकता, हम 14 घंटा यहाँ स्टडी कर रहे हैं, और मैं वो बोल रहा मैं अकेला स्टडी नहीं कर रहा हूँ, हर सीए स्टूडेंट इतना स्टडी करता है और तू तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, तू कैसे पास होगा। मैंने कहा देखो जो भी होगा ईश्वर करेगा, अच्छा करेगा। और जब रिजल्ट आया, 3 ग्रुप और बाकी थे, वो एक एक करके रिजल्ट आया, तो मैं सीए क्लियर हो गया, और मेरे 4 साल बाद वो भाई क्लियर हुआ सीए। रीजन ये नहीं था, इसमें कोई आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं थी, लेकिन राजयोग के द्वारा जो कंसंट्रेशन पावर डेवलप हुआ, जो 3 घंटे में मुझे याद आना चाहिए था, फाइलें तो सब पड़ी हुई थी, पॉजिटिव फाइलें भी पड़ी थी, नेगेटिव फाइलें भी पड़ी थी, सभी फाइलें इस ब्रेन में जमा की हुई थी, लेकिन उस 3 घंटे में जो फाइल खुलनी थी वही फाइल खुलती थी और अटेंड कर लेता।
ललित भाई मैं स्टॉप करूंगा, तो ये बात तो सही है, बट हमारे केस में क्या होता है कि जो नेगेटिव फाइल पड़ी होती है ना वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। सही है ना, मतलब कि ये होता है कि नेगेटिव, जैसे कि आपने बताया वो सही है आपके केस में बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बट जब मैं भी बुक ओपन करता था, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक होता था, तो मुझे पता है क्या याद आता था कि 2 महीने बाद अगर मेरे कजिन के मैरिज है तो उसमें मुझे क्या पहनना है। होता है ना ऐसा, आई मीन दैट्स अ वेरी फैक्ट क्वेश्चन। ये तो उस टाइम पे क्या करें, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन करना चाहते हो बट वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि नेगेटिव थॉट इतने भरे पड़े हैं।
ये आपकी बात नहीं है, मेरी अपनी बात वही है कि जब मैं इस राजयोग के अभ्यास के पहले जब मैं स्टडी करता था तो बुक लिया, पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, वो पैराग्राफ की 2 लाइन में कितनी बार पढ़ी होगी मुझे भी पता नहीं, 2 लाइन पढ़ने के बाद फिर मन कहीं चला जाता था, फिर वापिस शुरुआत करते, फिर 2-3 लाइन पढ़ते, फिर मन कहीं चला जाता था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा या हुआ होगा, ये प्रायः होता है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि ये इस राजयोग की कमाल है कि जो हमें अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाता है, कंट्रोल का मतलब दमन नहीं है, कंट्रोल का मतलब चैनलाइज है, कि जो हमें चैनलाइज करना सिखाता है एक पॉजिटिव पाथ पर, नेगेटिव को कैसे छोड़ना है वो भी सिखाता है और पॉजिटिव पर कैसे आगे चलता रहना है वो भी सिखाता है। वो इस राजयोग की कमाल है। वो राजयोग आप इस 3 दिन में आप उसका टेस्ट करेंगे, पूरा भोजन तो यहां नहीं मिलेगा 3 दिन में, तो केवल आपको टेस्ट ही मिलेगा। फिर आप अपने अपने स्थानों पर जाकर, अपने वहां जो ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है जिनके माध्यम से आप यहां आए हैं, वहां पर अगर आप इसका डेली आधा 1 घंटा इसका अभ्यास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास इसलिए है कि मेरे में परिवर्तन आया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि उसके द्वारा आप ये व्यर्थ और नेगेटिव, केवल व्यर्थ की बात नहीं है, नेगेटिव भी बहुत चलता है, तो व्यर्थ और नेगेटिव को फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव जहां पे आपको पहुंचना है उस लक्ष्य तक आप आगे बढ़ पाएंगे इस राजयोग के अभ्यास के द्वारा, ऐसा मेरा विश्वास है।
ओके थैंक यू। बात तो वैसे सही है, उसके लिए मेरे पास एक, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, एवरीबडी नोज लता मंगेशकर राइट, भारत रत्न जो सिंगर है हमारे, तो उनकी स्टोरी में पढ़ रहा था, तो वो स्टोरी में ये था कि शी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, उनका ये था कि वो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट समहाउ वो वर्कआउट नहीं हुआ, फिर उन्होंने सिंगिंग में थोड़ा काम किया, तो उनको पहला जब गाना मिला तब उन्होंने ऑडिशन देने के बाद उनको म्यूजिशियन ने बोला कि आपकी आवाज बहुत पतली है, यू कांट सिंग, सो गो अहेड विद दिस एक्टिंग पोजिशन। बबट बाद में उन्होंने प्रैक्टिस किया, 2-3 लोगों को सुनाया और फिर उनके गाने शुरू हुए, और आज हमने देखा है कि शी इज अ वेल नोन प्लेबैक सिंगर इन द वर्ल्ड। तो वो तो एक स्टोरी था, बट उषा दीदी से मैं क्वेश्चन करूंगा क्योंकि बिकॉज यू नो मेडिटेशन रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन ये है कि लाइक सक्सेस की जब बात करते हैं, जब कोई गोल और विजन लेकर हम लोग चलते हैं, तो ये मेरा नहीं बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दे फील कि कोई व्यक्ति, वस्तु और वैभव, एक कोई पर्सन होता है या कोई वस्तु होती है और कोई चीजें होती है, हम उसमें फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं लाइक अटैचमेंट टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट टुवर्ड्स द पर्सन, तो उसके वो जो थॉट हमको, जो सरप्लस थॉट होते हैं जो गोल के और सक्सेस के ड्यूरेशन में नहीं ले जाता है, तो वो जो 3 चीजें हैं व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इनको अवॉइड कैसे करें, मतलब क्योंकि वो तो प्रॉब्लम है, अटैचमेंट हो जाता है तो ना आप पढ़ पाओगे ना आप कुछ कर पाओगे।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आम होता है, खास करके जब एज ऐसी हो तो कहीं ना कहीं एक आधार ढूंढते हैं कि जिस आधार को लेकर के हम चले, और उसमें कभी कभी कोई व्यक्ति अगर मिल गया तो उसका आधार ले लिया, कभी कोई वस्तु मिल गई तो उसका आधार ले लिया। शुरू में तो आधार ही होता है लेकिन बाद में कैसे उसमें आसक्त तो हो जाते हैं, उसके तरफ हमारा अटैचमेंट शुरू हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही हम कोई आधार ले तो डेविएट होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए ये मन के अंदर, जैसे ललित भाई ने कहा कि फोकस्ड माइंड हो कि हमें अपनी मंजिल की ओर जाना है, हाँ रास्ते की साइट सीन्स तो अनेक आएगी, अनेक बातें आएंगी, लेकिन उसको देखते हुए या उसके साथ चलते हुए भी हम उसमें अगर मन चला भी गया तो बीच बीच में, जैसे अपने पटेल साहब ने कहा कि सेल्फ एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी कहीं पर भी अगर अटैचमेंट हुआ, उसमें फंसे, तो तुरंत उसका रिजल्ट दिखाई देगा हमें, कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक मिल जाएगा, एक पीछे ऐसा रिजल्ट आएगा। और उसमें अगर हमने एनालिसिस कर लिया कि ये चीज किससे हुई, तो शायद मैंने ज्यादा समय टेक्नोलॉजी के पीछे लगाया, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, हाँ, जहां तक ये अपने काम को सिद्ध करती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसमें हम अपना समय देने लगे, बहुत ज्यादा उसमें फंसने लगे, तो नेचुरल है कि डेविएशन होना बहुत स्वाभाविक, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर रिजल्ट मिलने के बाद भी जागृति नहीं आई, तो नेचुरल है कि उसमें फंसना शुरू हो जाता है। इसलिए एक रिजल्ट मिलते, एक संकेत मिल जाता है हमें रिजल्ट के रूप में, ताकि हम अपना एनालिसिस कर सके, और एनालिसिस कर लेंगे तो शायद हम अपने आप को कुछ समय के लिए साथ में होते हुए उसमें अलर्ट होकर के वापस अपने माइंड को फोकस करें, और वापस माइंड को फोकस करके उस तरफ हम लगाना शुरू करें। इसीलिए ये साइट सीन्स जो है, ये बातें, टेक्नोलॉजी, व्यक्ति, वस्तु आएंगी सब, लेकिन ये एक टेस्ट पेपर्स है हमारे लिए, तो हम यही कहेंगे एक टेस्ट पेपर्स है, और ये टेस्ट पेपर्स हमें रिजल्ट बताती है, और वो रिजल्ट में अगर हम जागृत हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं जागृत हुए तो फिर तो फेलियर की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है, और फिर सक्सेस की तरफ जाना, शायद वो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत मेहनत वाला रास्ता हो जाएगा। इसलिए पहले से ही अगर कॉशस हो जाए तो बहुत अच्छा है।
ये है कि मान लो कि मैं अटैच हुआ हूँ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव कोई भी है, तो वो मुझे अवेयर, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, सॉरी, बिकॉज व्हाट्सएप इज अ स्टैंडर्ड, फेसबुक और ट्विटर। और मान लो कोई व्यक्ति जो भी है, हमारे कलीग वगैरह है, अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा 80% टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं माइंड में क्या पॉजिटिव फीड करूं या क्या सोचूं?
पॉजिटिव फीड करने के बजाय अगर आप लगता है कि मैं उस तरफ अटैच होता जा रहा हूं, तो मैं समझती हूं कि उसी समय आप थोड़े समय के लिए व्हाट्सएप को बंद ही कर दो, है ना, बंद कर दो कि जो आपका समय खा रहा है। लेकिन हाँ, एडिक्शन होने के बाद शायद बहुत मुश्किल होता है। अभी ही मेरे पास में किसी ने बहुत सुंदर ये चीज भेजी कि भाई ये व्हाट्सएप कितना व्यक्ति के टाइम को नष्ट करता है। शुरू में तो हाँ ये कर लेते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, सबके साथ हम कनेक्टेड रह सकते हैं, और कनेक्टेड रहते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने को मिलती है, लेकिन कब वो एडिक्शन में चेंज हो जाता है वो पता नहीं चलता है। और आजकल जो यूथ के अंदर व्हाट्सएप की जो एक एडिक्शन है बहुत ज्यादा हो गई है, और इसलिए माना बार बार वो स्मार्टफोन अगर सिग्नल देता है तो तुरंत किसका मैसेज आए, किसका मैसेज आए, किसका मैसेज आए, ये एक जो टेंडेंसी हो गई है वो नेचुरल है कि कितने घंटे खा लेती है ये शायद कभी पता ही नहीं चलता है। इसलिए एक चीज ये करनी चाहिए कि अगर हाँ व्हाट्सएप यूज करो, हम मना नहीं करते हैं या हम उससे अगेंस्ट नहीं है, हम भी यूज करते हैं, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए और कितना टाइम देना है मुझे। इसलिए सारा समय हम क्या करते हैं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो मैंने अपने लिए निश्चित किया है कि उसको जब मैं अपने कारोबार में होती हूँ, उसमें होती हूँ, तो मैं उस डेटा को ऑफ कर लेती हूँ, आवे ही नहीं। जब मेरे पास टाइम है, ट्रैवलिंग में हूँ, टाइम है मेरे पास में, और उस समय मैं चेक करना चाहती हूँ, उस समय डेटा को स्विच ऑन करो, फट 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 आते रहेंगे। अच्छा, उसमें जितने भी चेक करना है आप कर लो, आपका आधा घंटा, एक घंटा अगर चला भी गया तो ट्रैवलिंग में है वो एक घंटा आपने उसमें यूज कर लिया, ठीक है, उसका फायदा ले लिया आपने, लोगों को हेलो हाय कर लिया, लेकिन एक एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए दिन में एक ऐसा टाइम फिक्स करो कि जब आप आधा घंटा ये निश्चित करो, और तब तक आप अपना डेटा प्लान स्विच ऑफ कर दो। यही हम तो कहेंगे तो एडिक्शन नहीं होंगे, नहीं तो वो जैसे ही सिग्नल बजता है तो आपका ध्यान खींचे नहीं, ये हो नहीं सकता है। और उसमें कितने घंटे खा जाते हैं और आपकी कितनी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ जा रही है, और वो उसमें चैनलाइज हो गई, इसका मैसेज अच्छा, इसका मैसेज अच्छा, वो चीज अच्छी, वो चीज अच्छी, उसी में अगर चले गए तो कितनी फालतू बातों में भी आप चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, और किस प्रकार ये एडिक्शन आपको बहुत माना यू विल डेफिनेटली हैव टू पे फॉर इट, माना आपके जीवन के कुछ अनमोल चीज के लिए आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए एडिक्शन अच्छी चीज, टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी को यूज करो लेकिन एडिक्ट ना हो जाओ। और जैसे ही आप सोचो, इसलिए मैंने कहा कि एक टाइम फिक्स करो कि भाई ये टाइम से ये टाइम हम फ्री है, उस समय हेलो हाय फ्रेंड से भी हो जाता है, जो काम की चीज है उससे हम करें, बाकी समय आप उसको डेटा को स्विच ऑफ ही रखो, तो ज्यादा आपको आपका ध्यान वो खींचेगा नहीं, आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक नहीं करेगा, डेविएट नहीं करेगा माइंड को, और आप उसका यूज भी कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को मास्टर बन करके यूज करो, गुलाम नहीं बन जाओ। ये साधन नहीं तो आज गुलाम बना देते हैं लोगों को, और वो गुलामी कितनी महंगी पड़ती है ये आप समझ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके वो सपने से आपको हटा करके बहुत दूर ले जाएंगे। ठीक है,
ओके। तो आज के बाद हम लोग ये करेंगे, जैसे मैंने देखा है कि हम लोग फ्रेंड वगैरह मिलते हैं तो वीकेंड होता है जब सैटरडे संडे, तो मैं यहां से आता हूं, मेरे फ्रेंड ऑफिस से आते, तो क्या करते हैं लोग कि हम लोग कहीं पे बैठे, वो मेरे घर पे आएंगे, मैं चाय बनाऊंगा, मैं सबको चाय दूंगा, और आप बिलीव नहीं करोगे हम लोग आठ लोग बैठे हैं, बट आठ लोग व्हाट्सएप पे है, या तो कोई फेसबुक स्वैप कर रहा है या तो कोई ट्विटर स्वैप कर रहा है। तो मैंने मेरा वाईफाई बंद कर दिया घर का, तो सबका बंद हो गया, तो मतलब उनका डेटा प्लान शुरू हो गया। फिर मैंने बोला कि आप घर जाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हो कि चाय अच्छी बनाई, उससे अच्छा यहीं पे पी के बता दो ना कि चाय कैसी बनी है। तो हम लोग एक काम करेंगे आज से, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दीदी ने जो बताया, मैं भी करता हूं, मेरा भी व्हाट्सएप है, बट मैं ये करता हूं कि मैं सर्टेन टाइम पे चेक करता हूं, बट मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ बैठे हो, एटलीस्ट उस टाइम पे उनके सामने व्हाट्सएप करना इट्स ऑल अबाउट एन इग्नोरेंस। और मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसे करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो हम सक्सेस, तो दूर की बात है, जो गोल डिसाइड किया है वो भी नहीं कर पाएंगे फिर। तो उसके अकॉर्डिंग में एक बात सर से पूछता हूं कि आपको कैसा लगता है कि जैसे कि डिपेंडेंसी है, मान लो कि ये सारी जो अभी के फिलहाल व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह जो हमें सक्सेस नहीं होने देती, मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है कि मैं जीमैट का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जीमैट के पॉइंट्स आते हैं, तो मैंने उनको ये बोला कि अगर ऐसा है तो सिर्फ वही ग्रुप में तुम एक्टिव रहो, तुम तो हर 50 ग्रुप में हाय हेलो करते रहते हो। तो वो डिपेंडेंसी जो होती है, मतलब आप कितने मायने में उसको मानते हो, अगर मान लो कि गोल डिसाइड हुआ है तो वो डिपेंडेंसी को छोड़ के अगर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है कोई भी लेवल में, लाइक वो एग्जाम हो या ऑफिस हो या कुछ भी हो, तो वो डिपेंडेंसी कैसे दूर करें?
मैं आपको बताऊं कि देखो, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है तो इसका भी पॉजिटिव यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि एक दिन ऐसा था जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पब्लिश कर रहा था, इसने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर वो टाइप करके भेजना था, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी ढूंढना पड़ता था। अहमदाबाद में मैं कितनी जगह घूमा, बाद में एक जगह मेरे को मिला तो इतना अडल्स आया कि जब वो बहन टाइप करने के लिए बैठी तो उसकी दादी गुजर गई, वो रड़ने लगी, वो मैंने बोला कि बहन आप घर पे चले जाओ, मेरा काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं देखूंगा। उसने बोला नहीं, मेरे को पहला काम आपका करना है, बाद में मेरी दादी के लिए मेरे को जाना है। दो घंटा उसने पेपर टाइप करके मेरे को 5 बजे दे दिया, वो इसको रिक्शा में चली गई बाद में। और वो पेपर लेके मैं जब निकला तो किसान आंदोलन चल रहा था, तो बीच में ट्री जितने पड़े थे, तो वो 5 किलोमीटर जैसा वो डिस्टेंस में चल के जाके 11 o'clock नाइट को मैं गाइड के घर पे बैठा। उसने देख लिया कि बराबर सही पेपर है, हमने भेज दिया। तो आप देखो अभी वो जो व्हाट्सएप वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो वो 3 दिन में जो मैं इतना जो आप सोचो वो करना है तो कर सकते हैं आप, इसमें व्हाट्सएप का जरूरत नहीं है। आपको जो करना है वो आप डिसाइडेड कर लो कि मेरा कोई गोल है, मेरे को ये पहुंचना है, करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी इंटरनेट व्हाट्सएप सबकी बात है, वो ठीक है। मगर वो आज देखो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त इतना कठिनाई था कि वो जो आपको अगला रिसर्च किसने कहां किया क्या किया, कोई फोन भी नहीं थे, तो इतना इसमें हम कर सकते थे। आई हैव पब्लिश माई 6 इंटरनेशनल पेपर इन 2 लैंग्वेज, यू सी, 1 इन जर्मन एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेज में मैंने वो पेपर पब्लिश किया था उस वक्त। तो उस वक्त वो नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने देखा है, मैं पीएचडी का भाई एडशिप कर रहा हूं अभी, मेरे यूनिवर्सिटी में पीएचडी सेक्शन है। लोग जो रिसर्च कर रहे हैं इधर से उठा के इधर डालते हैं और रिपोर्ट आता है हमारे पास, रेफरी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं तो हम अचरज हो जाते हैं। इसमें 75% कॉपी किया ऐसा लिख के आता है। तो आप देखो टेक्नोलॉजी का वो सही यूज नहीं कर रहे हो, गलत यूज कर रहे हैं। और गलत यूज करना और टाइम वेस्ट करना वो सही बात नहीं है। आप ये मोबाइल है सब है, मगर इसका पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव यूज मत करो। तो इसका यही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका।
ललित भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज हमारा लास्ट टाइम जब जयपुर में मीटिंग हुआ था तब हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि यूथ विंग का वेबसाइट तो है बट फेसबुक और ट्विटर हम लोग क्यों नहीं बना सकते। तो उस पर डिस्कशन हुआ था कि दादी बता रही थी जितना आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे उतना एडवांटेज तो है बट डिसएडवांटेज भी और एडिक्शन हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे उसमें?
मैं समझता हूं कि हमको आज के जो हमारा टॉक शो है इससे ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल हमारा एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन एंड यूथ डायनामिज्म, उसमें हम इसका डेप्थ में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। अभी फिलहाल इस टॉपिक पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया, बेंजी ने भी बताया कि जरूरत है तो हम यूज करें, लेकिन हमारे ब्रेक इतने पावरफुल हो जो समय पर लग भी सके, नहीं तो रास्ता बहुत स्लिपरी है। तो इम्पॉसिबल जो चीज पॉसिबल है वो भी इम्पॉसिबल हो सकती है, इतना ही मैं इस पे कहना चाहूंगा।
ओके, तो आपके लिए एक अलग से टॉपिक भी है। तो एक क्वेश्चन ये है उषा दीदी की, आपको पता है कि जैसे कि कोई चीज हम लोग करते हैं, जैसे कि आपने एक बार बताया था कि मेडिटेशन करो तो उसमें रिलैक्स होकर करो, तो एक क्वेश्चन ये है कि एक होता है कि पैनिक अटैक मतलब लोगों को एक पैनिक होता है जैसे कोई गोल को लेकर, कोई अपना जो विजन होता है तो वो जब उस पर काम करते अपने एम और गोल को लेकर तो उनको पैनिक होने लगता है कि ये होगा ये नहीं होगा और वो नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप करते हैं। तो वो जो पैनिक अटैक वाली बात है, द वर्ड इज पैनिक अटैक, कि उसमें वो फंसते ही जाते हैं, मतलब वो सोचते ही रहते हैं कि ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और सीधा वो गोल और जो विजन होता है जहां पे मैं सक्सेस लेना है वो पूरा ही मतलब चेंज हो जाता है बिकॉज दे आर पैनिक।
ऐसा है कि पैनिक होने के बजाय हमें यहां ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक बात बहुत अच्छी बताई जाती है कि जो होता है उसमें भी कल्याण है। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक स्थान से एक कलेक्टर आए थे, वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे और सक्सेस स्टोरी में उसने बहुत अच्छी बात शेयर किया कि वो साइंस स्टूडेंट थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने माना हमेशा ब्राइट रहे साइंस के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में, और उनका गोल ये था कि हमें कुछ साइंटिफिक फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन शायद नियति कुछ और थी। और इसलिए जब एग्जाम्स हुई तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो पास तो हो गए लेकिन इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए उनके। और इसलिए उनको जब परसेंटेज नहीं आए, कोई कॉलेज में जा नहीं सके, साइंस लाइन नहीं ले सके ट्वेल्थ में, तो फिर उन्होंने कॉमर्स लाइन लिया। कॉमर्स लाइन क्यों ले रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कॉमर्स लाइन ज्वाइन किया। बीकॉम हो गए। बीकॉम होने के बाद नेचुरल है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आया कि क्या एक गोल था और कहां हम पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक बैंक में उन्हें जॉब मिला। बैंक में बहुत अच्छी तरह से जॉब अपना करने लगे, लेकिन जो है कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी चली तो उसमें उनको किसी बात को लेकर के कुछ हुआ तो उनको बैंक से निकाल दिया गया। कहा बहुत उस समय वो हर्ट हुए कि विधाता भी कैसा का खेल खेलते हैं या कैसा है ये। उसके बाद कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करके देखा, कहीं से भी नहीं मिला, तो एक बहुत हताशा अंदर में थी, निराशा थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ब्राइट स्टूडेंट तो थे ही, तो घर में बैठे थे, फ्री थे, क्या करे। तो कोई फ्रेंड आया और उसने कहा कि ये आईएएस का फॉर्म है, भर दो तुम, देखो तो सही क्या होता है। ब्राइट स्टूडेंट होने के कारण उन्होंने भर दिया कि चलो जब तक जॉब मिले तब तक कुछ तो करे करके उन्होंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जैसे करते रहे, जॉब तो मिल नहीं रही थी कहीं से भी, तो एग्जाम्स दिया और सचमुच बहुत फ्लाइंग कलर से पास हुए और फिर जाके कलेक्टर बने। तो कहा कि तब मैंने महसूस किया कि साइंस में मेरे परसेंटेज कम क्यों आए ट्वेल्थ में, कॉमर्स लाइन क्यों ज्वाइन किया, वहां मेरे साथ पॉलिटिक्स क्यों हुई, उसके बाद जॉब न मिलना ये भी क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि विधाता मेरा रास्ता कहीं और था और मैं उस रास्ते पर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि घर में लोगों का प्रेशर ये था कि नहीं इस लाइन में जाना है, ये करना है। तो इसीलिए जो है जो नियति है उस तरफ से, तो कहा आज मैं जिस स्थान पर हूं, जो पोजीशन पर हूं, उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन है और लगता है कि नहीं मैंने जीवन में कुछ भी गंवाया नहीं, तो जो होता है उसमें कल्याण है, ये आज उनको महसूस होने लगा। कहने का भावार्थ कि उस वक्त तो पैनिक भी हुए, उस वक्त फ्रस्ट्रेशन में भी आए, निराशा भी हुई, स्ट्रेस भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी और आगे चलते गए। समय मौका भी देता है, समय भी देता है, स्थान भी देता है, हमें उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। अगर सदुपयोग करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, और विधाता का जो विधि का लेख है वो हमें कहां से कहां ले जाता है वो तब हमें महसूस होता है, और कैसे हम अपनी एक सक्सेस स्टोरी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं हर एक से पूछूंगा, तीनों हमारे गेस्ट से, कि ललित भाई आपसे पूछूंगा, आप क्या स्लोगन फॉलो करना चाहते हो इफ आई वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ? आई मीन ऐसी कौन सी स्लोगन जो आप ऑलवेज रिमाइंड करते हो अपने आप में?
मैं अपने आप को इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए, माना कुछ भी डिफिकल्ट होता है तो अपने आत्मविश्वास का तो सहारा लेता ही हूं, लेकिन एक स्लोगन जो मैं याद रखता हूं, ओम शांति और मेरा बाबा, माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मेरा बाबा मतलब परमात्मा पिता मेरा साथी है, और मुझे वो एनर्जी गेन होती है और काम हो जाता है, ये मेरा स्लोगन।
और सर आपके लिए कौन सा इंस्पिरेशनल है जो आप ऑलवेज बिलीव करते हो कि दिस इज द वन विथ हुम आई एम वर्किंग, और ये आपका इंस्पायर लाइफ है, मतलब जिससे आपने बोला कि यू आर सक्सेस?
देखो वो सक्सेस की बात जो हुई,
तो इसमें मैं वही कहूंगा आप लोगों को कि आप सक्सेस की ओर जाने का प्रयास करें, सक्सेस आपकी ओर आने का प्रयास नहीं करेगा। तो वही है मैसेज कि यू स्टार्ट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू गो टू द सक्सेस, डेफिनेटली विल गेट इट, बट सक्सेस आपके पास वो दौड़ के नहीं आएगा इफ यू आर नॉट स्टार्ट एनी एक्टिविटी।
और दीदी आप क्या फॉलो कर रहे हो?
मेरे जीवन का स्लोगन यही है कि तीन स्लोगन मैंने लिए हैं, हमारे दादी जी हमेशा कहती है, पहली बात हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, हिम्मत का कदम बढ़ाते चलो मदद अपने आप मिल जाती है, सारी कयानत जुड़ जाती है हमें उस सक्सेस की ओर ले जाने के लिए। दूसरा स्लोगन नियत साफ रखो मुराद हासिल, नियत अगर इंटेंशन क्लियर है, कॉन्शियस हमारा क्लियर है तो मुराद हासिल हो जाती है। और निश्चय में विजयी, निश्चय बुद्धि बन करके चलो, निश्चय बुद्धि विजयंती, फेथ इन द सेल्फ फेथ इन गॉड लीड्स टू सक्सेस, हमेशा वो सक्सेसफुल की ओर सक्सेस की ओर हमें ले जाएगा। तो इसलिए और उसमें जो भी हर्डल्स आते हैं सोचो इसमें भी कोई कल्याण है, कल्याण सोच करके आगे कदम बढ़ाओ तो देखो कैसे कल्याण दिखाई देने लगेगा, हुआ ही पड़ा है। तो ये मेरे जीवन का स्लोगन्स है कि ये तीन स्लोगन्स अगर लेकर के चलो आप अपने जीवन के अंदर तो सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। ओम शांति।
ओके ओम शांति। सो बिफोर फिनिशिंग एक बात मैं स्टोरी शेयर कर देता हूँ, देन विल मूव टू द मेडिटेशन। एक लेडी है जो अपनी लाइफ में मतलब इज ए सिंगल वूमन, तो वो काम करती है, बहुत कुछ काम करती है। एक दिन उसने लिखना शुरू किया, उसने एक बुक लिखा तो वो बुक लेकर वो लंदन में बहुत सारे पब्लिशर के पास गई कि ये छपना चाहिए। वो एक बार फेल हुई, दो बार फेल हुई, तीन बार फेल हुई। जब वो पांचवी बार फेल हुई तो उसने छोड़ दिया कि अब नहीं होना है, बट उसने बुक किसी एक और पर्सन को दिखाई कि आप ये पढ़ो एक बार। वो पर्सन ने बुक पढ़ी और उस पर मूवी बना और जो मूवी का नाम है हैरी पॉटर और वो पर्सन का नाम है जेके रॉलिंग। सो शी इज द वन हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। तो उसको पूछा गया कोई कॉन्फ्रेंस में लंदन में यूनिवर्सिटी में कि आपने गिव अप क्यों नहीं किया, तो उसने ये लिखा कि मेरे खुद के थॉट कितने प्योर है वो मुझे पता है, तो उसमें असफलता के कोई चांसेस ही नहीं थे। सो आई थिंक वी कैन फॉलो दैट। और थैंक्स अ लॉट ललित भाई, एस पटेल सर और उषा बहन, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। अगर आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप हमें दे सकते हैं, विल आस्क समटाइम टू उषा बहन एंड ललित भाई एंड एस पटेल सर एंड विल ट्राई टू कन्वे द मैसेज टू यू थ्रू ईमेल और एनीथिंग एल्स। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम लोग दो मिनट मेडिटेशन करेंगे, तो अभी तक जो जो बातें आपने सीखी, आपने जो समझी, उसमें से एक पॉइंट लेकर जस्ट कम्युनिकेट थ्रू मेडिटेशन टू सुप्रीम ऑलमाइटी, तो यू कैन रियलाइज के मेडिटेशन पावर क्या होती है। ओम शांति। और हमारे साथ रूपा बहन है जो आपको एक पॉजिटिव कमेंट्रीज देंगे दो तीन मिनट के लिए, जस्ट लिसन एंड बी ऑन दैट एंड देन यू कैन फील के मेडिटेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच एंड ओम शांति।
ओम शांति। सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। जो विजन जो ड्रीम दो दिन से हमारे सामने रखा जा रहा है, आइए चले अपने अंदर की ओर और मन की आंखों से महसूस करें अपने वास्तविक सफलतम व्यक्तित्व को, भीतर और भी भीतर। पूछिए अपने आप से मेरी सफलता का सपना वास्तव में क्या है, मेरी सफलता तक पहुंचने के लिए मुझे अपने अंदर उस दृढ़ता की महसूसता हो गई है जो मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूं। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यह दृढ़ता पूर्वक सफलतम व्यक्तित्व का चित्र मेरे मानस पटल पर स्पष्ट रूप से उभर चुका है। पूरी लगन और मेहनत से अब मुझे उस मानस चित्र को साकार में लाना है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां सदैव मेरे साथ है और यही निश्चय, यही विश्वास मुझ में उस ऊर्जा का संचार कर रहा है जो मुझे अपने सफलतम व्यक्तित्व को साकार करने में मददगार साबित होगी। दृढ़ संकल्प के साथ आज मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करती हूं कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं पाकर ही रहूंगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इस दृढ़ विश्वास और निश्चय के साथ चलते चले सफलता की राह पर एक हिम्मत का कदम हमारा और हजार गुना मदद परमात्मा की। इसी निश्चय के साथ अपने मानस चित्र को और स्पष्ट रूप से मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। और प्रैक्टिकल लाने के लिए दृढ़ हो जाए।